ಚೀನಿಮಂಡಿ.com ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್.
कांग्रेस रांकापा के चीनी उद्योग के गढ़ में भाजपा शिवसेना ने लगाई सेंध. महाराष्ट्र की राजनीति में चीनी उद्योग ने हमेशा ही अहम भूमिका निभाई है. पिछले 50 सालों में हर एक चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, चीनी उद्योग ने अपना खासा असर छोड़ा है. इस चीनी उद्योग और सहकारिता क्षेत्र पर कांग्रेस और रांकापा ने मजबूत पकड़ बनाकर रखी थी, लेकिन पिछले 10 सालों में कांग्रेस और रांकापा के चीनी उद्योग के गढ़ में विरोधी भाजपा और शिवसेना ने भी अपनी पैठ जमाई है, जिसके बलबूते पर भाजपा और शिवसेना ने कांग्रेस रांकापा का गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी महाराष्ट्र में भी बहुत तेजी से विस्तार किया है. इसी वजह से अभी चल रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस रांकापा को सत्ता में आने में मुश्किल हो सकती है. भाजपा और शिवसेना के बागी उम्मीदवार अगर मतों का खेल बिगाड़ देते हैं तो फिर कांग्रेस और रांकापा दोनों मिलकर 100 सीटों तक पहुंचने की उम्मीद है. नहीं तो ये दोनों राजनीतिक दल 100 के अंदर सिमटने की आशंका राजनीतिक जानकारों द्वारा जताई जा रही है. महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले एक साल में काफी उलट पुलट देखी गई. खासकर लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस रांकापा के कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा और शिवसेना का दामन थाम लिया. महाराष्ट्र के कई जिलों में रातों रात अनेक नेतागण भाजपाई हुए. इसमें सबसे ज्यादा संख्या चीनी मिलर्स की थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही विपक्ष दल में रहने की आदत नहीं है. अपनी मिल और अपनी अन्य संस्थाओं को बचाने के लिए इन नेताओं की भाजपा और शिवसेना में जाने के लिए जैसे होड़ लग गई थी, जिसे कांग्रेस और रांकापा ये दोनों दल काफी कमजोर हो गए हैं. विधानसभा चुनाव आते आते हालात ऐसे हो गए कि कई सीटों पर तो कांग्रेस और रांकापा को उम्मीदवार भी नहीं मिले. कोल्हापुर जिले में सांसद संजय मंडलिक, विधायक चंद्रदीप नरके, समरजीत सिंह खाड़के और कांग्रेस रांकापा की सरकार में मंत्री रह चुके विनय कोरे, इन्होंने हवा के बदलते रुख को पहचानते हुए पहले ही भाजपा और शिवसेना में दाखिल हुए थे. अब उनके बाद 4 महीने पहले रांकापा से लोकसभा उम्मीदवार भूतपूर्व सांसद धनंजय मंडलिक भी भाजपा में शामिल हो गए. साथ ही माधवराव घाटगे, अशोक चराटी भी भाजपाई बन गए हैं. सांगली जिले में भी पृथ्वीराज देशमुख सांसद संजय पाटिल के बाद अब नागनाथ नायकवडी के वारिस वैभव नायकवडी भी भाजपा में आ गए. सातारा जिले में रांकापा के सांसद उदयन राजे भोसले और एमएलए शिवेंद्र राजे भोसले, सुरेश भोसले, अतुल भोसले और भूतपूर्व कांग्रेसी एमएलए मदन भोसले भाजपा को मजबूत बनाने की कवायद कर रहे हैं. पुणे जिले में कांग्रेस के कद्दावर नेता और भूतपूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल, रंजन कुल, रंजन तावरे आदि नेताओं ने भाजपा की डोर संभाली है. सोलापुर में तो रांकापा को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके नेता विजय सिंह मोहिते पाटिल ने ही भाजपा में प्रवेश किया. उनके साथ साथ सोलापुर जिले के तानाजी सावंत, सुधाकर पंत परिचारक, दिलीप सोपल, रश्मि बागल, कल्याणराव काले, धनाजी साठे, समाधान अवताड़े, ये दिग्गज चीनी मिलर्स भी कांग्रेस और रांकापा को छोड़ भाजपा और शिवसेना में शामिल हो गए. महाराष्ट्र की राजनीति में चीनी उद्योग का योगदान काफी महत्वपूर्ण है. कांग्रेस ने चीनी उद्योग के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में खुद को काफी मजबूत बनाकर रखा था, जिससे उन्होंने सालों साल महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्षियों को करारी हार दी थी. लेकिन अब समय के साथ चीनी उद्योग की राजनीति ने भी करवट बदली है, और जिसके कारण कांग्रेस रांकापा को भाजपा और शिवसेना से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है. पश्चिमी महाराष्ट्र में कुल 119 चीनी मिले हैं और उसमें से 50 मिलों का पहले ही निजीकरण हुआ है. कई मिले गन्ने की कमी के कारण और कुछ मिले खराब प्रबंधन के चलते बंद हुई है. अब 114 मिले अच्छी स्थिति में हैं और उनमें से लगभग 44 मिलों पर भाजपा और शिवसेना का परचम लहरा रहा है. 30,000 करोड़ रुपयों की सालाना उलाढ़ाल करने वाले इस उद्योग में आने के बाद भाजपा और शिवसेना को शिकस्त देना कांग्रेस और रांकापा को मुश्किल हो गया है.